से पढ़ुआ, यहाँ तक कि नास्तिकों को भी उन्होंने अब किसको प्रेम दिया जाए। इसलिए नाप बिकाए चावल
पावल के सही और ताजे नहीं कहा,
और उसकी जरूरत नहीं रही। इसका तात्पर्य क्या? महाप्रभु जी से लोगों ने पूछा कि इसका क्या तात्पर्य हुआ जो पत्र आया है। महाप्रभु शांत और गंभीर हो गए, कुछ मौन हो गए, सिर थोड़ा सा नीचे हो
गया।
तो उन्होंने कहा, जब पूछा गया कि इसका क्या तात्पर्य है, हमारी समझ में नहीं आता, उन्होंने कहा कि भाई एक पुजारी है, पूजा के लिए ठाकुर जी का आह्वान किया, अब पूजा की जब पूजा पूरी हो गई अब उसका विसर्जन करना है, यही तो बात है, इसमें तो कोई बात नहीं। तो भी किसी ने समझा, सर्व दामोदर जी केवल किन्तु इतने गंभीर जो कहे चाहिए। अतः महाप्रभु जी को बुलाया इन्होंने, पुजारी है द्वैताचार्य, पूजा करने के लिए अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को राधा कृष्ण को बुलाया, अब उनकी पूजा समाप्त हो गई, अब विसर्जन का समय है, अर्थात अपने धाम में तैयारी कर। ये सुनकर के महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और समझा जैसे अब हमको अपने धाम में लीला को परे महाप्रभु भाव में गंभीर हो गए, और तब से लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, एकदम 200 घंटा एकदम भाव में विभोर रहने लगे, गंभीर आने और कभी नाक खस दिख रहे हैं, कभी एकदम भाव में विभोर कर समुद्र में डूब जाते हैं, कभी जगन्नाथ बाजा में भाव में विभोर करके बंसी सुन रही है, वहां इस तरह के भाव में लगे। कुछ दिनों के बाद में छोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और फिर कहीं पता ही नहीं चले महाप्रभु। इस प्रकार से गोपीनाथ के श्री अंग में अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के अप्रकट होने के बाद भी 25 साल तक थे, और 25 साल उन्होंने महाप्रभु जी के अवशिष्ट कामों को जो प्रचार करने का था ये प्रचार किया था। इसके बाद में श्रीनिवास आचार्य जब आए, अद्वैताचार्य समय थे, नित्यानंद प्रभु जी भी थे, किंतु उन्होंने वहां से छोड़ दिया और चले गए शांतिपुर बना। शिवास पंडित जी थे उसको छोड़ करके नई हाथ में चले आए, जितने भी भक्त थे उस स्थान को छोड़ करके, क्यों? नंद बाबा जैसे, जो नंद बाबा ने नंद गांव जैसे छोड़ दिया, उनका प्रत्येक चीज उनको अब काटता था उनके, इसी तरह से इन लोगों ने भी वो स्थान को छोड़ दिया, पूरी का स्थान भी छोड़ दिया, धीरे 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 अलग अलग स्थानों में रह करके किसी प्रकार से भजन करने लगे, कुछ लोग सब वृंदावन में आने लगे। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी भी वृंदावन में आ गए और सब वैष्णव लोग रूप रसनातन इनको केंद्र बिंदु करके खुश हुए। अद्वैताचार्य के बाद में वो भी अब इस तरह से अद्वैताचार्य महाविष्णु है, प्रेम को प्रचार करने के लिए महाप्रभु बुलाए, वो परम कृपालु हैं, सब समर्थ हैं, इसलिए आज हम उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, वो कृपा करें हम पर, हमारे अनर्थ दूर हों, वैष्णव को हरि गुरु वैष्णव को सम्मान देते हुए यथासाध्य भजन में हम लोग प्रविष्ट हों, महाप्रभु की विचारधारा को समझ सकें, यही उनसे हम प्रार्थना करके वक्त
मैं कृपा करता हूँ हमारी इसमें।
وہ جان کر کے دیا لائن سر اور نہیں تو اور ویسے ہی سپتی جو گرو ہیں وہی سب سمجھیں جب سپتی پورے نہیں ہیں اتم ادھیکاری نہیں ہے مدم ادھیکاری نہیں ہے مدم ادھیکاری کی تو نہیں بولنے سے بول سکتا اس لیے کہاں سارا سندر پد پر چلنے کے لیے شردھا کی ضرورت اس لیے کہا گیا آدھو विशेष करके साधु जी ने माधुर्य का कुंडली ने एक श्लोक के ऊपर नहीं पूरी माधुर्य का कुंडली वो श्लोक क्या है आयु दीक्षा लेकर के संबंध से युक्त होकर के निंदा इत्यादि अनर्थों अपराधों से दूर रहकर के कुछ कुछ अनर्थ तो रहेंगे किंतु ये सब जो है नमापराध से रहे और संबंध युक्त से रहे देश आदि अवगुणों से रही निंदा इत्यादि करीब होकर के भजन करेगा भजन जाएगा कहां जरूर हो जाए और ये यदि उसकी जड़ ही कट गई तो फिर श्रद्धा के साथ में विश्वास के साथ में क्या हो रहा है भजन करो आगे बढ़ने की चेष्टा सब वैष्णवों का यथा योग्य आदर देना सीखो सीखो इस तरह से चैतन्य चैतन्य में इसलिए पहले ही वैष्णवों की वंदना की पंच तत्व की वंदना की सब अमर की शिक्षा गुरु जी हमारा
शिक्षा गुरु जी हमारा
ये पांचों
बार पाठ करने कोटि नमस्कार
गुरु की सेवा करता है गुरु माने वैष्णव सब गुरु की सेवा करता है श्रद्धा से हरिनाम करता है और श्रद्धा से सब सेवा करता है सभी पैखाना साफ से लेकर के रसोई से लेकर और सब काम बड़ी श्रद्धा के साथ में करता है ये भगवान की गुरु की वैष्णव की ये सेवा है इसे हमारा यही हमारा भजन है एक तरफ से ऐसा वैष्णव को और दूसरी तरफ में भागवत का परम ज्ञाता वेदांत को जानने वाला और वक्तृता देने वाला भी बुद्धिमान किंतु वैष्णव के प्रति गुरु के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है 3 लाख हरिनाम करते हैं जाके लिए हम हरिनाम करते पाए और शास्त्र का 3 लाख अध्ययन करते हैं दोनों में कौन बड़ा हुआ पहला या दूसरा तो इसी को समझो। इसलिए विद्वता पर भक्ति निर्भर नहीं है, वह है कृष्ण के प्रति वैष्णव के प्रति ममता और प्रीति के ऊपर। यह प्रति ये भगवान की लाडली और संबित शक्ति की प्रति है। इसलिए कल परसों बतला था, ये वो जो भक्ति लता का भी जो कृष्ण सेवा की वासना है, ये क्या चीज है? वो स्वरूप शक्ति की ये वृत्ति है, परम स्वतंत्र है। देखिए कि जैसे ये वृद्धाचरण कर रहे हैं तो वहां से हट जाएगी। देखे कि जिसमें श्रद्धा है चल रहा है ठीक से, इन सब पर भक्ति स्वतंत्र वृत्ति है। खूब सावधानी के साथ में भजन करने की चेष्टा करो। विद्या और ये पर निर्भर अधिक मत रहना। कौन सा था? सेवा की वासना बढ़ते बढ़ते ले आए हैं यहां महाप्रभु जी के वो जो राधाया प्रणय महिमा सिद्ध व अनेवा स्वाब्दो ये लाभ। ये द्वितीय वंशा के संबंध में यहां पर बोलते हैं। अद्वैताचार्य तो मुख्य के गौण है, उनका महाप्रभु जी को लाना, महाप्रभु जी के अवतार। ये प्रथम वंशा हुई राधा या प्रणय महिमा। राधा जी की प्रणय की महिमा कैसी है, कृष्ण के प्रति उनकी कैसी अद्भुत उनका प्रणय है, जिसे बाध्य होकर के कृष्ण जगत में अवतरित होते हैं। कृष्ण लीला में इस चीज को नहीं समझ सके, ये समझे परम करुण है और कृष्ण होने की वजह से वो विचार करता है कि जगत के सबको लुप्त कर देता है, विशेष करके सबसे लुप्त करता है ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों में से भी सखाओं को, उनसे भी अधिक यशोदा मैया बाबा और उनसे भी गोपी, उन गोपियों ने भी चंद्रावली इत्यादि और राधा जी और उन दोनों ने भी श्रीमती राधिका को। ये कैसा मरा माधुर्य है जिसका आस्वादन करते हैं भक्त। भजन के प्रारंभ से भजन में भी एक माधुर्य है, जिस साधक को भजन में कुछ माधुर्य का आस्वादन होगा वो समझे वो अरुचि हो गई। आज जिसको रुचि नहीं है रुचि नहीं है। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुर में ती जगत बिहार के हूं नहीं बीते पारे सीमा, ये प्रेम द्वारे मित्र राधिका एक कवि अमार माधुर्य अमृत आस्वादेश कर, हमारे माधुर्य अमृत को आस्वादन कर। कृष्ण मानो जिस समय में गोपियों को दर्शन देने के लिए आए, मन मत मन मथा उसी समय में कंस आ जाता, अगासुर बकासुर आ जाते तो उनको प्रेम हो जाता कि नहीं, तो माधुर्य का आचरण करते
जम के समझ लेते।
इसी तरह से समझो, यदि ब्रह्मा पे तो उनको वो प्रेम उत्पन्न हो जाता नहीं होता, ये किसको हुआ? जिसमें आधार है, आधार माने महाभाव है, वो उसको महारथ राज रूप इत्यादि के रूप में देखेगा, दूसरा नहीं देख सकते। हम लोगों को भी उसमें यदि दर्शन करेंगे ना तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, या उनको साधारण आदमी समझेंगे। इसलिए हाँ कोई अच्छा भी उनका देखा या कुछ ऐसा हुआ, इसलिए अनुभूति नहीं होगी। इसलिए प्रेम की जो प्रेम प्रयोजन है, किस लिए? उस माधुर्य को आस्वाद में, इसलिए प्रेम की प्रयोजन, अन्यथा बिना उस प्रेम के, या प्रेम जितने ही उत्तरोत्तर अधिक होगा उतना ही अधिक उसका आस्वादन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए इसको कहेंगे एकली श्रीमती राधिका जी सबसे अधिक रूप में आस्वादन करती है। जगत निर्मल राधा सत प्रेम दर्पण
তথা স্বচ্ছতা বাড়ে তারে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ। আমার মাধুর্য নাহি বাড়িতে অবকাশ, এ দর্পণ আগে নূপে ভাষ। যদি কৃষ্ণ কা মাধুর্য ইতনা হ্যাঁ কি আগে বড়ি গুঞ্জাইশ নই হু ইনকি আস্বাদন কা লোভ এসা হর্পণ হি এসা হ যে কৃষ্ণ কে মাধুর্য কো বড়া দেতা হিনকা ভি নই হকাশ ইতনা অধিক মাধুর্য আস্বাদন করার কি লালসা আর উনি ইতনা মাধুরী দোনো মে হোল লকর কে ক্রমশ বসতে হয়ে চলে যাতে মন মাধুর্য রাধা প্রেম দোহে হোর করি খনে খনে বাড়ে দোহে কেহো নাহি হারি দোনো মে কোই নাহি হার কভি ও জিততা হয় কভি ও জিততা হয় আমার মাধুর্য নিত্য নও নও হয় অপরিচলিত পূর্বম কশ চমৎকারী ইত্যাদি হমনে বর্ণন কিয়া গোপেশ্চ কৃষ্ণ উপলব্ধ চিরাদ অভীষ্টম যত্রেক্ষণে দৃশেষু বক্ষপিতম সপন্তি দৃঢ়ী হৃদি কৃতম অলম পরিদব্য সর্বা স্বভাব মাপুরমপি নিত্য যুজান দুরাপন। নিত্য যুজান দুরাপন যে যোগী লোক হ্যাঁ যে সব সময় হৃদয় মে উনসে যুক্ত রহতে হ্যাঁ উন লোকের কে লিয়ে স্বভাব আপুরম দুরাপন ও উনকে লিয়ে দুরাপন মানে দুর্লভ হ্যাঁ উন নিত্য যোগী ব্রহ্মা শঙ্কর সুখদেব গোস্বামী অর যোগীয় কে লিয়ে ও অত্যন্ত দুর্লভ হ্যাঁ কৌন সা গোপ্যস্ত কৃষ্ণ উপলব্ধ। সূর্য গ্রহণ কে বাদ মে গোপীয় নে কৃষ্ণ কো দেখা বহু চিরাগ অভীষ্ট বহু দিনোকে বাদ মে আপনি অভীষ্ট কৃষ্ণ কো উপলব্ধ নিকট মে পা করকে একদম ক্যা কে উনি দৃঢ়ী হৃদি কৃতম অলম আঁখোকে মাধ্যম সে কৃষ্ণ কো হৃদয় মে লেকর পরিবদ্ধ সর্বা কৃষ্ণ কি সর্বাঙ্গ কো হৃদয় মে লেকর কে অর আলিঙ্গন কর লিয়া और जत्रेक्षण विशेष उपक्त कृतम सपन आंखों में आंसू भराया आंख को साफ दे रहे आंख में पलखे गिर रही उसको साफ आंख में पलक है इसलिए जो बनाने वाला है उसको साफ दे रही अपने को भी ब्रह्मा को भी पक्ष कृतम सपन थी ये कोई गोपी नहीं संभव है दूसरों के लिए संभव नहीं पाठ जन অনভিকাননম তুই যুগায়েতে তাম অপশ্যতাম কুটিল কুন্তলম ত্রিমুখঞ্চতে জড় উদীক্ষতাম পক্ষ কৃদৃশা শ্রীমদ ভাগবত কে একাদশ একত্রিশ অধ্যায় কে পনেরো শ্লোক কো বতলা রে পঠ দিজ ভগবান গোপিয়া কর ভগবান অন্ধি কাননম অটতি ভগবান মানে জব আপ কৃষ্ণ কে লিয়ে করে ভগবান আপ জব गोचारण करने के लिए गोचारण में सखाओं और गैयों के साथ में या बच्चों के सहित में जब कानन में प्रवेश करते ही जाते हैं या वहां से लौट करके जाओ आ रहे हैं कुटी जुगाए थे ताम अपश्यतम उस समय जब चले जाते हैं तो आपके दर्शन से त्रुटि जुगाए थे एक त्रुटि का समय एक युग के समान दिखता है ताम अपश्यतम आपको नहीं देख करके और जब वहां से आते हैं आने के बाद में आंख की पलके गिरने से आंसू आने से या कुछ मूर्छित होने से भी नहीं देख पाते उसमें भी एक क्षण झुक के समान होता है और जब मिलन होता है उस समय में योग युग एक क्षण के ये किस चीज का लक्षण है महाभाव का जिसमें महाभाव होगा वो समझेगा द्वारकावासियों में कभी कभी कदाचित महाभाव महाभाव की छाया द्रौपदी पांडव में ये महाभाव नहीं है यशोदा मैया में भी ये भाव नहीं है नंद बाबा में भी सुबल सिद्धांत में से कभी कभी सुबल मधुमंगल इत्यादि को हो सकता है ये इनको हो सकता है इससे बात में इन लोगों में मतलब ऐसा ये महाभाव इसलिए यहां पर कह रही है वही अरविजल भवान अंधी काननम अंधी मैंने काननम त्रुटि जुगाए थे ताम अपश्यताम आपको न देखने से ऐसा हम लोगों को ऐसा होता है अपने गुरु जी को नहीं देखने से उनके गुरु जी के बिना भी काम चल रहा है क्यों त्रुटि नहीं है विरक्त होगा जब उनके बिना काम नहीं चले हृदय एकदम आकृष्ट है। किसी वैष्णव के लिए ऐसा होता है तो राम भजन क्या करेंगे। अंततः किसी वैष्णव के प्रति गुरु के प्रति तो इतना होना चाहिए ना, कुसुम का समय नहीं होता आज यदि नहीं है तो बड़े सुख से जीवन यापन हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है। अनर्थ हम लोगों में अपराध ही है, अभी रुचि नहीं आई, आसक्ति नहीं आई, नहीं तो पहले ये वैष्णव पर होगा, फिर गुरु के ऊपर में होगा, तब फिर भगवान। जब गुरु वैष्णव के प्रति नहीं है, भक्ति के प्रति नहीं, भक्ति नहीं है तो इसलिए हाय है नहीं है, हाय है भक्ति नहीं, इसलिए कुटिल कुंतलम श्री मुखं चते जड़ उदीक्षताम पक्ष प्रतिशा आके मुख मुखारविंद कुटिल कुंतल ये तो है भ्रमर और ये सुंदर मुखारविंद है कमल, कमल के ऊपर में वो जैसे अलके और ऊपर से पाउडर धूल धूल से गऊ के खूब से और भी सुंदर लग रहा है। ऐसे मुख को देख करके जड़ उदीक्षता ये ब्रह्मा जी जड़ हैं जिन्होंने पक्षकृत पक्षकृत माने मुख है जड़ है उनको ज्ञान नहीं कहा। ये कैसा बनाना चाहिए, यदि हमें होता है इसका तो हम ब्रह्मा जी को कोटि आंखें देकर के ये बतला देते जो है सृष्टि कैसी होनी चाहिए। कृष्ण अवलोकन बिना नेत्र नहीं खोला, यही जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। आंखों का फल एकमात्र कृष्ण का ही दर्शन है। ये सब कौन कह रहा है, ये गोपियों करते कि दूसरा कहने का अधिकारी नहीं है। हम लोग क्यों कह रहे हैं सुन रहे हैं, यदि एक छीट कहीं कोई छीट आ जाए ऐसा थोड़ा सा लोभ हो जाए हृदय, इसलिए अहमतान फलमिदम न परम विराम सख्या पशुन अनुदेश वयसी वक्रम ब्रजेश सुतयो अनुदेम जयदानीतम अनुरक्त पटाक्षण। इसकी व्याख्या हमने पहले की थी, अक्षमतान फलम न परम विदान, आंखों का फल दूसरा कुछ है हम नहीं जानते। अक्षमतान जिनको आंखें हैं उन आंखों का फल क्या है, इदम यही है, इसका कृपा कुछ नहीं है। तो क्या है यही सख्त पशुन अंध विषय तो वयस्य ही वक्रम जत ब्रजेश सुत अनुदेम जयदानीतम अनुरक्त कटाक्षम। कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हो चारों तरफ से सखा उनको फेर रखे हो, लाखों लाखों करोड़ों गायों का समूह जा रहा हो धावली और श्यामली और ये सब, और वो हम बा कर रही हो और उसमें कृष्ण बंसी बजा रहे हो और ब्रजेश सुतयो ब्रजेंद्र नंदन के दोनों पुत्र हों सुतयो जो बंसी बजा रहे हो कृष्ण बलदेव उनको उस समय में जयगा निपीतन उनके मुख से बंसी की आवाज निकल रही है सुंदर मुखारविंद है उसको जिसने इन आंखों से पिया निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अत्यंत अनुरक्त प्रेमपूर्ण कटाक्ष से वो देख रहे हो कटाक्ष का मोक्ष मनी छोड़ रहे हो कटाक्ष देश है जिन्होंने उसने उनको देखा इस प्रकार से करुण भरी दृष्टि से देख रहे हो को जो देखा उन्हीं की आंखों की सार्थकता है और अन्य लोगों की आंखें मोर पंख की आंख है उसका कोई मतलब नहीं। उसमें फिर से बतलाया था उसने जो ब्रजेश सत्यो बलदेव जी का भी ब्रजेश सुख होना ठीक है क्योंकि अपने पिता वसुदेव देवकी को वो नहीं जानते, वो इन्हीं को अपना माता नहीं जानते। दूसरी बात गोपियों को गोपियां यहां पर अवस्था अवलंबन कर रही हैं, वो कृष्ण को चाहती हैं किंतु दूसरे जो सुन रही हैं उन लोगों को ठगने के लिए ये कह रही हैं ब्रजेश सुतयो दोनों ब्रजेश किंतु अनु जो पीछे चल रहे हैं उनके लिए जिनके मुंह पर बंसी कृष्ण के हाथों में बंसी के अतिरिक्त सिंगा भी है सिंगावधिक बजाते हैं और कृष्ण उनके पीछे जो चल रहे हैं जो दूरी पर जिनके हाथों में बंसी है अधरों पर विराज रही है और वही देख रहे हैं बड़ी प्रेम भरी कटाक्ष से देख रहे हैं, उसको यदि कोई इसने देखा तो आखिर सार्थक था, अन्यथा सार्थक नहीं। अथवा ब्रजेश सुतयो बतलाया सुपाश सुतयो, नंद बाबा के पुत्र सुत और विश्वानु के सुता दोनों परस्पर मिले हैं, और राधा जी उनके हाथों से बंसी अनु पीछे, पहले कृष्ण बजा रहे हैं पीछे से उन्होंने ले ली और बजा रहे हैं, और उसके रंध्रों को कृष्ण ही नहीं तो ऐसे कर रहे हैं, या कृष्ण ही कर रहे हैं और वो बजा रहे हैं अनुबेन्द्र कृष्ण और परस्पर को देख रहे हैं। इस कटाक्ष का जो मोक्षण है आता तो ऐसे कटाक्ष भरी प्रेम भरी दृष्टि की तरफ में उन्होंने जिन्होंने देखा उन्हीं के जीवन की साथ। फिर कह रहे हैं ये किस लिए कर? अपने माधुर्य का वर्णन कृष्ण सोच रहे हैं, ये असल में है ये चैतन्य महाप्रभु जी का विचार, कृष्ण का माधुर्य क्या है और राधा जी किस रूप में लेना चाहते हैं, ये भी वाक्य श्रीमती राधिका का ही समझो। तो गुप्त तप अब ये बतला रहे हैं मथुरापुरी की वो जो रमणियां हैं, जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए और गली में जब विचरण कर रहे हैं और विचरण करते करते उसके उसमें पहुंचे हैं सभा में, जहां पर कि चार मुष्टिक इत्यादि खड़ा है और वहां पंजा मिलाने के लिए तैयार है, और कृष्ण को पकड़ करके खेचा अखाड़े की तरफ, उसमें इतनी हाहाकार कर उठी। कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल मधुर इत्यादि देखा, और मुष्टिक और चारू का शरीर वज्र के समान बहुत लंबा चौड़ा देकर देकर के पहले उसी कृष्ण को अभिदूषण कंस और दूसरे लोग वज्र के समान, कोई मृत्यु के समान, कोई जम के समान, कोई तप्तम परम योगी नाम ये सब उनको देख रहे थे। और ये गोपियां कैसी देख रही हैं, गोपियां को परम प्रियतम के रूप में देख रहे हैं, कामदेव के रूप में कृष्ण को, तो इसलिए कृष्ण को वो देख करके और चिंतित हो गई, और कहीं इस सभा में से चला जाना ही धार्मिक लोगों का कर्तव्य, जिस सभा को अधर्म प्रवेश कर जाता है वहां पर नहीं रहना चाहिए। यहां पर इतने लोग हैं कोई मना नहीं कर रहे, ठीक ये सिद्ध नहीं होना चाहिए, बराबरी के समान होता है, और यहां पर तो ये कुछ दूसरा ही सृजन आता है, इसको बच्चों को मारने के लिए इन्हें लगाया गया, इसलिए हाय करते हुए और कर रही है कि हमने ये देखा तो हमारा सौभाग्य है, किंतु गोपियों जैसा सौभाग्य नहीं है। एक शेर को किसी पिंजरे में बंद देखा, वो क्या होता है सर्कस इत्यादि बुला पतला कर करके बिजली का तार लेकर के और घुमाते हैं, और एक वन में दहाड़ रहा है सिंह, उनको देखो दोनों में अंतर होगा। तो यहां पर ब्रज में गोपियों ने जो कृष्ण को जो देखा इसलिए वही धन्य है, हम धन्य है किंतु वो ऐसी धन्य नहीं। गुप्त तपस्माकरण जदमुष्मा रूपम लावण्य सार समुद्रम सिद्धम दृग्वीतिमंत अनुसवा अभिनवम दुराप एकांत धाम जसस श्रिय ऐश्वर्य गुप्त तप किम आचरण। और गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया था, ऐसा कौन सा आचरण किया था, यज्ञ तप दान तीर्थों में स्नान आदि कौन सा ये सब कुछ किया था जो अमुष्म रूपम, ये सामने कृष्ण को देख रही है, बलदेव को देख रही है, कृष्ण को देख करती कृष्ण के इस रूप को वो देखती थी कैसे लावण्य सार असमोधानंद से विश्व ब्रह्मांड के गोलोक वृंदावन क्या इतना लावण्य है उसका ये सार है, एक साथ में ये एकत्रित किया गया है कृष्ण का रूप असमोधव असम उद्धव विश्व में इसकी कोई तुलना नहीं है। नारायण सबसे सुंदर है, श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहिनी समस्त जगत जन श्याम से बाम बुझ बद कदाम ताम इंद्रिय दृढ़ तो ये नारायण बड़े सुंदर हैं, लक्ष्मी के प्रियतन है, किंतु इनसे बहुत अधिक कृष्ण का आराम बड़े सुंदर हैं दुर्बार दल श्याम है, किंतु इनसे भी अधिक सुंदर कृष्ण है। लावण्य सारा जितना लावण्य है उसका सार और असम उद्धव असम उद्धव उनके बराबर ही नहीं है, तो उद्धव ऊंचा उठने की तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई सौंदर्य नहीं। अनन्य सिद्धम न अन्य सिद्धम, अन्य किसी चीज के अपेक्षा नहीं। आभूषण स्नान करना श्रृंगार करना कपड़े पहनना इसके अधीन नहीं। बहुत से काले कल उठे हैं पाउडर लगा करके हल्दी लगा करके और सुन के सुंदर आभूषण और अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो बर बन जाता है तो कुछ सुंदर लगता ही। कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण का अंग कैसा भूषणम, यह उनका अंग भूषणों का भी भूषण है। इसलिए कृष्ण यदि कोई कपड़ा ना पहने तो इसको कहते हैं दीक्षिति। दीक्षिति मैंने क्या कोई भी आभूषण धारण नहीं किया और गौओं के चरण से उठे हुए रज को से वो उनका मुखार बिंदर लगा हुआ है धूलि भूषण को भी अपूर्व सुंदर दिखते हैं, एक और तरह का सौंदर्य होता है। और इधर में यदि कोई स्नान न करे हो और शाम को लौटे वो धूलि से देखो तो उसका चेहरा ये कैसा लगता है। कृष्ण या महाप्रभु पढ़ने जा रहे हो और यहां पर एक काली का बिंदु लग गया तो देखो कैसा सुंदर अद्भुत लग जाएगा। इसलिए किसी उनका सौंदर्य किसी के अधीन नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं सिद्ध है। कृष्ण का रूप कृष्ण का गुण कृष्ण का शरीर कृष्ण का सभी कुछ वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किंतु नारायण राम द्वारकाधी ये सब अपेक्षा रखते हैं किसका, ये कृष्ण का। इसलिए कृष्ण स्वयं रूप है और ये लोग कोई कदै सदै कात्म रूप कोई विलास रूप कोई प्रकाश कोई वैभव को, इसलिए कृष्ण ही सबसे अनन्य सिद्ध है। दृढ़ तिवंत अनुसवम अनुसवाभिनवम दुराप एकांत धाम दृग्धि तिवंती अनुसव अनुसव माने होता है मदिरा आसव अनुसवाद भिन्न नए नए रूप में नए नए आस्वाद जब पीता ये घुट पिया दूसरा घुट पिया और स्वाद तीसरा घुट और स्वाद। इस तरह से कृष्ण का यह जो रूप है आंखों से पी रहे हैं और कैसे मदिरा पान जैसे होता है उस रूप को पान करके नए नए रूप में उसका स्वादन होता है। दुराग एकांत धाम जस्स दूसरों के लिए दुह आप प्राप्त नहीं हो सकता, दूसरों के लिए नहीं, यह गोपियों के लिए केवल है। इसलिए गोपियों ने कौन सी स्थिति तपस्या की आराधना की जो कृष्ण का यह रूप उनको दर्शन करने के लिए मिला। एकांत धाम यह जो रूप उनका है ये कैसा है, एकांत धाम जसस जसस श्रीय ऐश्वर्य जस और श्री समग्र ऐश्वर्य ये तीन उपलक्षण में कहे गए, बाकी तीन को रख करके अर्थात तीनों के लिए अर्थात छओ के लिए ऐश्वर्य समग्रस्य दिव्य जस श्रीय ज्ञान दायाव सन्ना भगवना ये सभी ऐश्वर्यों के लिए कहा गया। ये सबका एकांत धाम धाम माने अर्थात जितना सौंदर्य है जितना ऐश्वर्य है जितना जस है श्री माने रूप लावण्य है ये सबका एकांत धाम है खजाना है आधार है। इसी से बाकी सब ईश्वर लोगों को नारायण प्यारी जितने भी अवतार हैं सबको जितने भी अवतार हैं बड़े सुंदर होते हैं। जैसे भगवान का मत्स्य अवतार तप सुंदर वो मकरी मकरा की तपुंदर यहां पर मकरा का मकरी का आकृत कर देते हैं मकरा मैंने होता है मकरसा न ऐसा और एक होता है मछली एक होता है मगर मगर होता है ना मगर से मकर ये सभी उसके किंतु इसमें मछली सबसे उपयोगी सबसे सुंदर होती है। भगवान का मत्स्य रूप भगवान का सुख रूप कैसा है आदवो भक्त लोग देखते ही उसकी आराधना करने में लग जाते हैं। बामन किंतु सुंदर कितने हैं, बलि महाराज भी उठ करके खड़े होकर के अभिवादन करने लगे। परशुराम रूप सभी रूप वैसे ही, राम रूप परम अभिराम रूप है, इस तरह से सभी रूपों को समझे। किंतु सबका मूल एकांत धाम कौन है, कृष्ण रूप, कृष्ण से ही सब रूप आ रहे। अपूर्व माधुरी कृष्ण अपूर्व तार बल, कृष्ण के रूप की अपूर्व माधुरी है और अपूर्व तार बल, उसका बल भी आकर्षण बहुत बल है। तार श्रवण मन है तलमल, उनके श्रवण में मन तलमल हो जाता, हम लोगों का हो रहा है ना खूब तलमल, अनर्थ प्रस्तुति, किंतु इसमें जितना जिनका अनर्थ थोड़ा सा दूर हो रहा है उतना उस पर प्रभाव करता, उसको आकर्षण करेगा, और जिस पर मोर्चा लगा हुआ है जिस पर लोहे पर, उसको आकर्षण नहीं करेगा। कृष्ण माधुर्य कृष्ण ऊपर गए लोग, कृष्ण का माधुर्य ही इतना सुंदर है कि अपने आप कृष्ण को भी इसको प्राप्त करने के लिए, उपभोग करने के लिए लालसा जग उठती है। सम्मुख आस्वादित नारे मोने रहे छो, कृष्ण अपनी परछाई में दर्पण में जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, बहुत ही सुंदर हैं, किंतु बहुत चेष्टा करके भी राधा जी जैसे उस रूप का आस्वादन करती हैं ये नहीं कर सके। राधा जी की बात क्या, कोई एक साधारण सी गोपी है उसके समान भी ये अपने उस रूप को उपभोग नहीं कर सके। कारण क्यों, वो जो चीज है वो उनके पास है, जिससे आस्वादन करती है उनके पास में नहीं। जैसे मान लिया कि सुंदर सुंदर खाने की चीजें हैं, टेस्टफुल हैं और सुंदर सुंदर, और भूख नहीं है तो नहीं। और जिसको इसी में से किसी को भूख है उसके लिए बड़ा टेस्टफुल लगेगा, और जिसको भूख नहीं है उसको टेस्टफुल नहीं लगेगा। गोपियों को भूख है, भूख माने महाभाव है, कृष्ण का जो महाभाव है दूसरों विषय जाति है, गोपियों का आश्रय जाति जो महाभाव इत्यादि है वो नहीं, इसलिए उसको आस्वादन चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा हमको देखकर के राधा जी मूर्छित हो गई, क्यों हो गई, मैं राधा जी को देखकर के या अपना रूप देखकर के तो मूर्छित होता नहीं, क्यों है? फिर विचार करके देखा आश्रय जाति भाव हमारे अंदर में नहीं, यह आश्रय जाति सबसे श्रेष्ठ भाव है किसमें, इसलिए वो भाव यदि हमको मिल जाए तब हम आस्वादन कर, इसी के लोभ से वो चैतन्य महाप्रभु ये दूसरी बात आज ही तक रहे। लाखों जन्मों से हम लोग भगवान अभी तो आप लोग महिला हुई हैं, हो सकता है कि इसके पहले सुअर भी हुई हो, आगे भी स्वर के लिए तैयार रहना होगा यदि भगवान का भजन न करो। गधे यदि भगवान का भजन नहीं होगा, कभी गधा कभी कुत्ता कुत्ती ऐसे ही जन्म, कभी स्वर्ग में भी देवी के रूप में जन्म होगा, कभी कुछ होगा। अभी इंदिरा गांधी को देखो, बेटे को देखो, जो कैसे ऐसे ही जन्म होगा मरण होगा यदि भगवान का भजन। अभी आप लोगों ने कीर्तन किया, अभी बैठ जाओ दो मिनट माता, बैठ जाओ माता जी, बिना पैसे जीवन की बेटी ने गाया क्या गया, चलिए करने के लिए नहीं, जितना प्रकार का भजन है। अभी एक और आप लोगों ने कीर्तन, जितने प्रकार के व्रत हैं एकादशी के दिन उसमें बतलाया, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ये समझा ना, तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमको ज्ञान दे सके, जो हम संसार में जैसे लिपट पिपट रहे हैं, और गुरु भी ऐसा ही संसार में रफ्तार न वाला हो तो वो क्या शिक्षा देगा, जो स्वयं भजन करने वाला है ऐसा ज्ञान दे सके कि हम सबको भगवान के शरण में लगा दे,
तो ऐसे गुरु से ही तो होता है ना ज्ञान। सत्संग, सत्संग में यदि शुद्ध शुद्ध बातें नहीं कहेगा तो नमक और मस्त मिसाला लगा करके भागवत की कथा कहे, भागवत की कथा करा करके मिर्च और मसाला इत्यादि बना करके लोगों को मनोरंजन करने के लिए बात कर, शुद्ध बातें नहीं कहेंगे। भागवत में गीता में जो त्याग और वैराग्य की बातें कहीं वो कहते हैं नहीं बताए, कपिल देवहूति की बात नहीं कहेंगे, अम्बरीश महाराज की बात नहीं कहेंगे, वो बातों को चौकी चिकनी चुपड़ी बता करके कहेंगे। ऐसे सत्संग में कुछ नहीं होगा, जो कि सत्संग कैसा होना चाहिए जैसे अस्पताल में थिएटर रूम में ऑपरेशन होता है, गुरु ऐसा होना चाहिए। और क्या कर नया रक्त संचार करे, वो क्या कृष्ण की भक्ति का संचार कर दे, तब तो ये गुरु गुरु है। मनोरंजन करने वाला गुरु गुरु नहीं, नहीं तो फिर वहां पर सत्संग में मोती नहीं बिखरेगी। यदि सत्संग हमने 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष सुना और मन जहां संसार में आसक्त था वहीं पर लगा रह गया तो क्या हुआ, कुछ उन्नति तो होनी चाहिए ना। और संसार से जितना हमारा थोड़ा सा तब तक ये सत्संग है दिल नहीं है, तुम लोग तो प्राउड हो चुकी, नए नए जो आ रहे हैं उनको घर में रुचि नहीं, उनको भी रुचि आए तुम लोग भी अच्छी तरह से चलो और उन चीजों को हृदय में लो, हमारी सहायता करेंगे। जब जगत की मैया हमारा पालन पोषण करती है तो उनको भी कुछ है, उनको निरादर नहीं करना है, किंतु हमारा आराध्य और हम भजन करेंगे कृष्ण का ही। किंतु ये भी याद रखना कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा जी की प्रसन्नता नहीं होगी तो नहीं होंगे, कुछ भी मत करो ये समझो कि राधा जी मैं आपकी हूं, बस इतना ही मन में स्थित करो, फिर राधा जी आपके बिना हमारा कोई नहीं, आप ही हमारी सर्वस्व है, आप प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण बिना चुट्टी बजाते हैं प्रसन्न हो जाएंगे। कोई प्यार बराजी से भी अभी आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण में रुचि हो, कृष्ण में अनुराग हो, थोड़ा सा ये भी रखना होगा कोई गंदा चीज खाना पीना व्यवहार करना नहीं। आजकल बहुत सी चीजें सब चल रही है, इन चीजों से परहेज रखना चाहिए। आज माने क्या होता है, हम लोग आज ऋषियों की संतान, आज आचरण युक्त जिनका विचार हो वो आज है, आचरण होना चाहिए, आचरण नहीं होना चाहिए। और संसार के लोग आचरण नहीं करते थे, हमारे यहां के लोग आचरण करते थे, भगवान का भजन करते थे, शुद्धाचार रखते थे, राधा कृष्ण का भजन करते थे, किसी का अहित नहीं करते थे, निंदा नहीं करते थे, दिन रात संसार में व्यस्त नहीं रहते थे। द्रौपदी कुंती अहल्या तारा सीता गोपियां ये सब आदर्श है, इसी आदर्श के अनुसार में चले, नए रंग में मत रहेंगे भी, ये लड़कियां भी हैं नए रंग में रंग रही है, धीरे बाल कटाना फैशन लगाना सदाचार नहीं सीखना, सदाचार सीखो, ये सब ग्रहण करने की चीजें हैं। बनो तो हम लोग द्रौपदी जैसे बनेंगे, सीता जी जैसे बनेंगे और हमारी प्राचीन संस्कृति की जो नदियां की वैसे उन चीजों को शिक्षा करना है। राधा कृष्ण का भजन, उसमें भी राधा जी का अधिक रूप में भजन करना चाहिए, भजन करना कोई कठिन नहीं है, इसमें कहने में क्या लगता है राधा जी का, और सब कुछ में ऐसा होना चाहिए। राधा जी का भजन करने से कृष्ण का भी हो जाएगा और जितना देवता देवी जो कुछ है सब प्रसन्न, एक एक को प्रसन्न करने जाओ कोई भी नहीं प्रसन्न होगा। इसलिए आप लोग ब्रज की लड़कियां हैं, ब्रज की माताएं हैं, ब्रज की बहनें हैं, एकादशी का व्रत जरूर करेंगी, जन्माष्टमी रामनवमी भी करेंगी, और राधा कृष्ण की एकांतिक पूजा होनी चाहिए, एकांतिक भजन होना चाहिए। यदि और किसी की पूजा करनी भी है तो राधा कृष्ण की पूजा करके उनके प्रसाद से उनको निवेदन कर दो, बस उनको प्रणाम कर दो कि राधा कृष्ण के चरणों में हमारी मत, ये संकेत नहीं इतना ही अभी करो, भगवान के चरण में प्रेम होगा, संसार का मोह नहीं आएगा और जाते समय भगवान का स्मरण हो जाएगा और संसार बंधन कट जाएगा।
वंशाकुभ्युभ्य पति पावने वैष्णवेभ्यो नमो महाबन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरक्षिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कप्तकांतं गौरं वृंदावनेश्वरं विषभानुसुते देव अंगश्यामलिंचकाभिरभितमन्दिरकेन्द्रीवर बृंदारंभ निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामो राधास्कन्दनीयेषितो जगद्गुरुं ध्याय भक्त्या विहीनापराधं कृताश्रितामादितरणमद्भुतं कृतामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रजन्तमन्ते समपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कर्तव्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो सन्दर्भो जननी तवैवास्मि तवैवास्मि महाप्रभु जी कृष्ण की द्वितीय वांछा के संबंध में हमने विचार कर रहे, क्यों चैतन्य महाप्रभु जी आए, कृष्ण की राधा जी की प्रणय महिमा, दूसरा उनकी माधुरी, तो उनकी माधुर्य के संबंध में वो बतलाया कृष्ण कैसे सुंदर है। बंद कर दो, उनका रूप मधुर है, उनका सब कुछ मधुर और सुंदर है, और सबसे अधिक ब्रजवासी लोग इसका आस्वादन करते हैं, उनमें भी गोपियां, उनमें भी सुमति राधिका, कृष्ण को ऐसे लालसा हुई जो मैं अपने रूप का ऐसा ही उपभोग कर सकूं, किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि गोपियों के भाव राधा जी के भाव उनमें न आए, उनका जैसा प्रेम, प्रेम से अनुराग, अनुराग से बढ़कर के भाव, भाव से महाभाव, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव नहीं आए, ये नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं इच्छा करने पर भी कृष्ण नहीं कर सके, इसलिए राधा जी को राधा जी का भाव ग्रहण करने की लालसा उत्पन्न, ये दूसरा कारण हुआ। तो दूसरे कारण के अंतर्गत में ये बतला रहे हैं, कल जिसकी मैंने व्याख्या श्लोक की मैंने की थी, गुप्त तपा की मातरण जमग्नो स्मरूपम लावण्य सार असमो धनन्य सिद्धम दृग्धी पिबंती अनुसवा अभिनवम दुराप एकांत धाम जशस श्रिय ऐश्वर्य।
कल्वा ने बतलाया मथुरावासी महिलाएं रंगभूमि में कृष्ण को चारू मस्तिष्क से लड़ते हुए देख करके कहा, इस सभा को अधर्म स्पष्ट कर रहा है, इसलिए यहां से चला जाना अच्छा है। तो कृष्ण का यह इतना सुंदर रूप जो प्रति क्षण नया नया होता है, उसको ये गोपियां कैसा पान करती हैं। यदि हम जाने जो गोपियों ने पूर्व जन्म में इस जन्म में कौन सा तप किया था, आचरण किया था या क्या आचरण किया था, यदि कोई भविष्य वक्ता हो जानने वाला और तुम लोगों में से सखियों यदि कोई है तो ये बतलाओ, तो हम लोग भी वैसा ही आचरण करके कृष्ण के उस रूप का पान करें। यहां पर गोपियों का कहने का ये तात्पर्य है, मथुरावासी महिलाओं का, गोपियां कृष्ण को देखकर के तन्मय हो जाती थी और उस रूप को देखने के लिए घर बार स्त्री पुत्र लोक लज्जा मान सम्मान सब कुछ को छोड़ दिया, वो उनका ऐसा हो जाता था कि मुग्ध हो जाती थी, जो शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। और हम लोग अभी तक ज्ञान है विचार कर रही है, कृष्ण का रूप है कैसा है ये विचार कर रही है, लोग उनको देख रहे हैं ये भी विचार कर रही है, अभी शरीर का होश है, मन में अभी विचार भी आ रहे हैं जा रहे हैं, किंतु उनका तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बोल बाल करके एकदम तन्मय होकर के मैं हूं या नहीं हूं ये भी ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी को अभी संपात कर रही है एक पलक लगने से, तो इसलिए हंत हंत गोपियां महान सुकृति हैं। उन्होंने सुकृति ऐसा कौन सा कर्म किया तपस्या की जो गोपियों के अतिरिक्त ऐसा किसी में भाव नहीं आया, यदि पता लग जाए तो हम भी वैसा तपस्या या आचरण करके दान पुण्य करके हम भी ऐसा ही हम लोग हो सके। यदि आप लोगों में से कोई सर्वज्ञ है तो वो बतला सकता है, बतला सकते हैं तो वैसा ही हम करेंगे। और बाकी हमने प्राय मैंने बतलाया जो कैसे स्वयं सिद्ध है उनका रूप, आभूषण के नहीं बिना भी बहुत सुंदर दिखता है, गुरोज लगने पर भी अत्यंत सुंदर दिखता है, और क्या उनकी सुंदर सवारी है या तब तक आने की बात में नई सवारी है, मुख में ही लटक रही हैं और चलते समय में हिल रही हैं, कुंदन झलक रहे हो, कुंदन ये सोने का नहीं रह करके कनेर फूल का भी लगा दिया या कोई भी फूल का भी बना करके लगा दिया, अत्यंत सुंदर रमणीय मनोहर लगता है। दूसरों के लिए देवताओं के लिए यह संभव नहीं है, देवियों के लिए संभव नहीं है, यहां तक कि ब्राह्मणों के लिए संभव नहीं है, लक्ष्मी जी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, जो गोपियों के लिए है। यहां पर हम जो जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं ये वो रूप नहीं है, है तो वही, क्यों क्यों नहीं रूप है, अभी क्रोधावेश में है, इनको मारने के लिए चेष्टा की जा रही है, तो भी कितने सुंदर, हाथ में वो हाथी का दांत है, खून के छींटे लगे हुए हैं उस पर भी है और उनके मुखारविंद में भी है, और कुछ रोष हैं, आंखें जरा थोड़ी सी लाल हो गई हैं, मुख भी थोड़ा सा क्रोध से रोष से भरा पड़ा है, तब इतने सुंदर, और गोपियां उस रूप को दर्शन करती हैं, वह रूप अनन्य सिद्ध है, और ऐश्वर्य वीर्य जस श्री सबका वो एकांत धाम है। एकांत धाम माने क्या, राम नारायण और जितने रूप हैं वो सब से उद्धार लेते हैं, किससे, इसलिए वो एकांत धाम है, उसी से सब लोग लेते हैं, यदि उनका यह रूप नहीं होता तो नारायण राम और सब में ये रूप नहीं जाता, इसलिए एकांत धाम है। अन्य अनन्य सिद्ध लावण्य सार और स्वाभिनवम प्रतिक्षण नवीन नवीन होने वाला। इस जगत का कोई भी ऐसा रूप नहीं, एक बार देख लिया और जूठा हो गया, फिर देखने की लालसा हुई, जब तक नहीं देखा तब तक। और कृष्ण का रूप है प्रतिक्षण नया नया होता जाएगा, किंतु किन के लिए? कंस के लिए, जरासंध के लिए, इनके लिए नहीं, जिनके अंदर में प्रीति है। कृष्ण अपूर्व बता दो जाने मन है तलम। कृष्ण क्रिया माधुरी अपूर्व, अपूर्व माने आज तक कहीं भी नहीं वैसा हुआ, अपूर्व अपूर्व पार बल, उसका बल भी अपूर्व है कृष्ण की माधुरी का, जिसके समय से मन तलमल हो जाता है। कृष्ण और माधुरी कृष्ण उपजाए लो सम्यक आस्पादित नारे मन रहे छो। कृष्ण अपने रूप को आस्वादन करना चाहते हैं, कभी प्रतिबिंब में देखा, जल में बिंब में देखा, कभी दर्पण में देखा, देखा कि गोपियों को इतना आनंद मुझे देख करके होता है, कैसी ये रूप की माधुरी है, उनके अंदर में लोभ उत्पन्न छुप्त हो जाते हैं। किंतु सम्यक आस्वादित नारे, कुछ कुछ आस्वादन तो करते हैं किंतु सम्यक नहीं, सम्यक माने सब प्रकार से अच्छी तरह से नहीं, जैसे गोपियां, उनकी तो बात क्या, एक छोटी सी बालिका है, कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं या गोचारण को जा रहे हैं, छोटी सी बालिका अभी 5-7 वर्ष की, बस कृष्ण को जैसे तो देखती ही रह गई, ऐसे कृष्ण अपने रूप को देखते रह गई है उनमें नहीं। एक हिरण कृष्ण के रूप को देख रही, कृष्ण अपने रूप को ऐसा देख सकेंगे? वो भाव नहीं है। इसलिए जिसको सबसे बेसी आनंद जिनको होता है वो राधिका जी को होता है। राधिका जी के हृदय के भाव को यदि मैं ले लूं तब मैं इसका अन्य भाषण को एक तृतीय हेतु हेतु के कारण था महाप्रभु जी कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में है इसका वर्णन किया। तृतीय इसका कारण मिले आए क्या अखनता फल मिला, ऐसा सुंदर रूप गोचार करने के लिए कृष्ण जा रहे हैं, गाय काम से गाय जमुना और गंगा भी करके चल रही हैं, काली गायें सफेद गायें जा रही और चारों तरफ में सखा अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर सखा, और कृष्ण का अपूर्व रूप बरहा पीड़म नटवर अथवा हिरण्य परिधिम ये सब रूप, और एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं और उस समय में बंसी बजाते हुए किसी की खोज में उनकी आंखें भटक रही हों, लालायित हैं देखने के लिए, उसमें कृष्ण का ये आंखों से निकली हुई जो कटाक्ष भंगी है उसे यदि देखा तो ये उसकी आंखें इतना सुंदर उपेक्ष कृष्ण मुखोलब्ध विराग अभिष्टमित में भी बताया। कुरुक्षेत्र में गोपियां मिली, कुछ दिनों के बाद में कृष्ण को देखा और उन्होंने अपने नैनों से कृष्ण को अपने अंदर और संपूर्ण अंग का आलिंगन किया और एकदम कर गए, कितना सुंदर रूप है, इतने सुंदर गुण और सुंदर भाव है और किसी में भी नहीं है। इसलिए बतला है अनुप उनके समान कोई भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। अब तृतीय गुण अर्थ बतला है अत्यंत निगुण एई रस रस, ये जब भी जो तीसरा बतला है अत्यंत गुण भाव है। स्वरूप गोसाई मात्र जाने एकांत, केवल मात्र जानने वाला कौन है इस विश्व ब्रह्मांड में, केवल मात्र स्वरूप दाम ललिता के ललिता जी है। स्वरूप गोसाई मात्र जाने वही जानते हैं इतना निगुण है,
स्वप्न ही शुद्ध है। लोग नहीं समझ पाते कि स्वप्न किसको कहते हैं, समझते हमारे भगवान के प्रति तो बहुत सत्कार। जो कनिष्ठ है वो समझता कि मैं मुझको सभी कुछ प्राप्त है, मैं भगवान का पूर्ण रूप से भजन करता हूं। मतलब अधिकारी क्या समझेगा, और उत्तम अधिकारी अरे मैं तो कुछ भजन नहीं करता, कृष्ण में मुझे प्रेम नहीं है, राधा जी कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता, ये सब अनुभूति के ऊपर में है। आज जो नहीं करते तो बहुत एकदम प्रेम हो गया, भक्ति हो गई है, हमने तो कृष्ण को भी देखा, रोज उनसे बातचीत होती है, खाक देखा ना पत्थर देखा, कुछ भी संबंध नहीं है। एकांत निगूढ़ रसे सिद्धांत, पहले तो भक्ति है, भक्ति जगत में दुर्लभ है, फिर भक्ति रस आदो श्रद्धा से लेकर के भाव तक, भाव के समय में उसका थोड़ा सा परिचय, और इसके बाद में दूसरा जन्म हुआ प्रेम हुआ तब फिर वो भक्ति रस होगा। उस रस के सिद्धांत को जानना स्वरूप गोस्वामी ही जानते हैं, और क्यों स्वरूप दामोदर सब समय उनके साथ उनके समस्त भावों से परिचित है। यदि दूसरा कोई जानता भी है जीवा कहो और न जाने, यदि कुछ जानता है जैसे रूप गोस्वामी जानते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जानते हैं, कैसे जानते हैं स्वरूप गोस्वामी के संग से उनकी बातों से सुन करके तब जानते हैं। यदि कहो जो हम मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी मैंने लिखा, नहीं हमने सुना रघुनाथ दास गोस्वामी से, और रघुनाथ दास गोस्वामी कहां से, स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी से, इन लोगों ने कहां से सुना, महाप्रभु। इसलिए मूर्त महाप्रभु, इसके बाद में स्वरूप दामोदर, इसलिए जो कुछ भी कोई जानता है उन्हीं से, हम लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो स्वरूप दामोदर की कृपा से मूल में वही है, इसलिए स्वरूप रूप रघुनाथ इत्यादि आता है। जीवा के हो अन्न जाने सिंह जाने तहां हईते चैतन्य गोसाई तिहो अत्यंत मर्म जाते। चैतन्य महाप्रभु का मर्म, मर्म माने क्या शब्द है, कहां है, ताते, ताते माने स्वरूप दामोदर के हृदय में, वो उनके हृदय में महाप्रभु के जो भाव है वो सब एकदम है। ये संपत्ति है, एकदम मूल खजाना है, यहीं से करेंसी नोट सब छपती है चलती है, दूसरी जगह नहीं, यही मूल है, टकसाल जिसको कहते हैं। गोपी प्रेम अधिरूढ़ भावना, गोपियों का जो प्रेम है वो अधिरूढ़ भाव, जिसके अंदर अभी श्रद्धा नहीं है, जिनको फुर्सत नहीं है संसारिक बातों से और संसारिक मोह माया ममता क्रोध लोभ, और उनको रूढ़ अधिरूढ़ भाव बतलाया जाए तो भैंस के आगे बीन बजावे, मोती लुटा रहे हैं, बंदरों को मोती लुटा रहे हैं, उनसे क्या मतलब है, उनको एक अमरूद अथवा कोई खाने की चीज दे दो बस वह लपक पड़े, मोती का कदर नहीं है। ऐसे ही हम लोग ये सब मोती लुटा रहे हैं, कौन कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिया कहां से, मूल स्वरूप दामोदर राय रामानंद रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि से लेकर के ये दे रहे हैं। तो ये कैसी मोती है, हम नहीं देखते हैं उसे लूट रहे हैं, हमारे भाग्य में नहीं आ। गोपी प्रेम अद्भुत भावना, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभी नहीं कहा, ये निर्मल प्रेम है, विशुद्ध प्रेम काम नहीं है, इसी को बता रहे हैं। संसार में सबसे पहले कृष्ण ही महाप्रभु रूप में आकर के इस चीज को प्रकाश किया, यदि तीसरे में ये दिखलाएंगे जो अभी प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए पहले ही बतला रहे भूमिका दे रहे हैं, आप लोग भी सावधान हो, अंततः जीवन में होगा नहीं होगा थोड़ा सा समझो इस चीज को, समझने पर तो हो सकता है कि कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य से थोड़ी सी इसमें रुचि आ जाए, लोग थोड़ा सा आ जाए, इसलिए बतला रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। राधा जी के दो भाव को उन्होंने बतलाया, तीसरे भाव को बतलाने के लिए ये कह रहे हैं, जिस भाव के लिए वो आए हैं वो उसको केवल महाप्रभु कृष्ण ही जानते, किस लिए आए। दो कारण के बाद तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या है, राधाया प्रणय महिमा की दृशह वानयैव वा स्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा की दृशह। इसके बाद में अस्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा की दृशो आमदीय सौखं चाश्च मद अनुभवत, मद अनुभवत कीदृशम
नहीं
मद अनुभवत कीदृशम सुखम, इसको जानने के लिए हमारा अनुभव करके प्रेम की माधुरी की अनुभव किया जो हमारी माधुरी कैसी है और उसका माधुरी को आस्वादन करके कैसा सुख उनको होता है, जिस सुख में अपने को भूल जाती हैं, संसार को भूल जाती हैं, लोक लज्जा धर्म आर्य पद सबको भूल जाती हैं, उस सुख के आस्वादन में वो सुख हमारा अनुभव, मत अनुभव कर, मुझे अनुभव कर माने मेरे माधुरी को अनुभव कर, राधा जी की प्रणय महिमा को जानकर उसको आस्वादन करके उनको किस जातीय सुख होता है, मुझे आस्वादन करके वो सुख क्या है। अब इसी सुख को बतला रहे हैं, वो सुख क्या है, भक्ति रस, भक्ति रस यही बढ़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। बस अब यही तक कर कारण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको बतलाया है। ये दूसरे मध्य लीला में चैतन्य लीला रत्न सार, रत्नों का भी सार, स्वरूपेर भंडार, तीनों थुला रघुनाथ कंठे, कृष्ण चैतन्य रत्नसार स्वरूपेर भंडार तीनों थुला रघुनाथ कंठे, ताहा किछु जे सुनिल ताहा एई विवरिल भक्तगण दिल एई भेटे। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य लीला रत्नों का अमृत का सार है और यह सार संपूर्ण रूप में स्वरूप दामोदर के हृदय में भंडार के रूप में है। उन्होंने कुछ इसमें का रघुनाथ जी गोस्वामी के कंठ में कुछ उन्होंने उनसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो कुछ सुना समझा उनके संग में देखा उन्होंने मेरे निकट वर्णन किया अनुग्रह करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे। और मैं आज सहर्ष वह रत्न मैं भक्तों के लिए भेंट दे रहा हूं, यह सब उनका भेंट है मैं भक्तों के लिए। यदि कहो जे रूप गोस्वामी क्या नहीं जानते, रामानंद नहीं जानते, रामानंद और स्वरूप दामोदर करीब एक ही है, उनका दूसरी बात। तब रूप गोस्वामी यदि जानते हैं तो वो किससे जानते हैं, स्वरूप दामोदर के ही निकट जानते हैं क्योंकि उनके गण में है, ये ललिता जी के गण में स्वरूप दामोदर के ये गण हैं, उनके अनुगत हैं। महाप्रभु जी रूप गोस्वामी भी उनका संग किया किंतु उनको समझने के लिए स्वरूप दामोदर जी की सहायता लेनी पड़ी। महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर जी रूप गोस्वामी के परीक्षक हैं, परीक्षा लिया ना, कहां परीक्षा लिया, वो जो ललित माधव विदग्ध माधव का जो भूमिका है नंदी मुखी इत्यादि जो श्लोक लिखे थे उसमें उनसे पूछ रहे हैं, और छात्र बहुत तीव्र बुद्धि का वो भी वैसा ही उत्तर दे रहा है और उत्तर सुनकर के स्वरूप दामोदर जी का हृदय एकदम स्फीत हो रहा है आनंद के मारे, और जो श्रोता है देखेंगे वाह बहुत ही सुंदर, और महाप्रभु आज आनंद की सीमा नहीं, उसको सुन करके तो ये भी हमसे ले रहे हैं रूप गोस्वामी भी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी रूप गोस्वामी से तो भेंट नहीं हुई, किंतु उनका भी जो कुछ था संग्रह उन्होंने भी रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया था। इनको द्वारा लाभ है स्वरूप दामोदर का, रामानंद जी का, महाप्रभु जी का और साथ साथ में जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दी महाप्रभु जी ने वो रघुनाथ जी को नहीं दी। क्यों? ये बालक है छोटा सा, ये कुछ समझेगा नहीं, इसलिए नहीं। रूप गोस्वामी को प्रयाग में रस तत्व की शिक्षा दी उनको नहीं, वो तो जो समझ रहे हैं देख रहे हैं स्वरूप दामोदर से, ये तो प्रश्न भी महाप्रभु जी को नहीं कर सकते और ये महाप्रभु से डायरेक्ट इनकी सब चीजें होती हैं। इसलिए वो सब जो चीजें थी वो सब रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली और उन्होंने इनको और उन्हीं रत्न को अब ये हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब भक्तों को उपहार दे रहे हैं। स्वरूप गोस्वामी मत रूप रघुनाथ जाने जत तहां लिखी नहीं मोर दोष। स्वरूप गोसाई स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जत लिखी नहीं तार मोर दोष। स्वरूप गोसाई जो विचार उनका है उनका रस भंडार जो है वो रूप रघुनाथ जानते हैं और वो जो जितना जानते हैं उन्होंने मुझको जो स्फूर्ति कराई कहा सुना उनके कर्चा श्लोकों में मैंने देखा मैं इनको लिख रहा हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है। ये दोष की बात करते जो मेरा गुण नहीं है दोष क्यों कहा? दोष क्यों कहा? लोग कहते हैं कि ये सहजिया है ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए। राधा कृष्ण की अलौकिक जो लीलाएं हैं निभृत में मिलते हैं परस्पर आदान प्रेम का जो करते हैं दान घाटी में जो भाव होते हैं वो जगत के लोगों के सामने नहीं कहना उचित है, किंतु मैं लिख रहा हूं इसमें मेरा दोष क्या? उन्होंने हमको कहा और हमने दिया, यदि नहीं मैं देता तो संसार से लुप्त हो जाती है रत्न, इसलिए मैंने दिया, इसमें मेरा दोष नहीं है। गुण तो है ही नहीं है, गुण तो उन्हीं लोगों का, किंतु दोष भी हमारा नहीं है जो हमको दोष लगेंगे। ऐसा क्यों चीज जगत में दिया जिससे लोग ऐसे हो जाए व्यभिचारी हो जाएंगे या और ऐसे हो जाए? संभावना है मिसप्रयोग ना करें इसका, दुरुपयोग ना करें इसलिए। किंतु यदि लड़के लड़की के सामने में आजकल जैसे कि वो दिखला रहे हैं ना टीवी और इसमें लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा है दिखला रहे हैं ना, और जो नहीं दिखलाना चाहिए उसको अर्धनग्न अवस्था में दिखलाते हैं, ये उचित नहीं। उससे भी कोटि गुण इसमें ये चीजें हैं जो वो लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। किंतु किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो काम क्रोध और माया के मोह से ऊपर उठ गए हैं, उन लोगों के लिए है ये। इसलिए कहते हैं मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है। स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ जाने जत जो कुछ जानते हैं उनको मैं लिखी लिख रहा हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है। भाई जो तुमने क्यों लिखा ये चैतन्य चैतामृत में राधा जी कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं, उनका चुंबन कर रही हैं, क्यों लिखा? ये तो बहुत गंदी बात है जो संसार के लोग उन्हें भी नहीं करना चाहिए और ये लिख रहे हैं। बतलाओ दूसरों की स्त्रियों को लेकर के रात में राश करे और उनका कपड़ा चुरा करके पेड़ पर चढ़ जाए और उनसे कहे जी आ जाओ प्रणाम करते हुए हमारे पास में आ जाओ सीधे तन करके खड़े होकर के आ जाए, ये बतलाओ तो ये सदाचार है? नहीं लिखना चाहिए। किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी होकर के इसको लिखा है तो जगत से ये चीजें सदा के लिए चली जाती, कोई इसको समझने लायक रहता है इस जगत में, इसलिए हमने लिखा है, उसमें हमारा दोष नहीं है। कोई कहेगा क्यों लिखा? कभी हमारा दोष क्या? तो मैंने आदेश पालन किया उसको किया, इसी तरह से वो कह रहे हैं। इसलिए विश्वस्त सूत्र से वो अवगत होकर के इन चीजों को दे रहे हैं, निर्भीक होकर के दे रहे हैं, ये नहीं जैसे कौवा ले लेगा कि कोयल भी केवल लेगी। क्यों? वो डर रहे थे, वो डर उनका दूर हो गया। कौवा कभी भी आम की निमौरी वो मंजरी नहीं लेते, वो तो निमौली खाती है कलुई को, और उसी के पेड़ पर उसको बैठना अच्छा लगता है। कहता जी जगत में यदि कोई पेड़ है तो नीम ही है, निरोग रह सकते हैं, किंतु नीम के पत्ते पर कभी भी मधु नहीं लगता, इन्हें समझो। वहां नीम के पत्तों से यदि कुछ बरसता भी है मधु के रूप में, वो बहुत कड़वा होता है, रोगों को नाश, पित्त इत्यादि को, ये सब किंतु सुख नहीं देगा, स्वास्थ्य लौटा देगा, माने मोक्ष करा देगा, रस नहीं देगा, प्रेम नहीं देगा। निगुण बताया अत्यंत गोपनीय है, दूसरों के लिए अनाधिकारी लोगों के लिए ये उचित नहीं है, अनाधिकारी लोगों को नहीं देना चाहिए। रस का सिद्धांत, पहले सोचो कि रस की सामग्री क्या है, पहले नर्क को दूर हो, काम क्रोध लोग बहुत मोह मार, श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति ये सब आए, भाव आए, शिक्षा करो, इसमें बहुत कुछ है, अनर्थ कितने प्रकार के हैं ये सब जाने, इसके बाद में सब, और उसके बाद में रस की सामग्री, भाव विभाव अनुभव सात्विक व्यभिचारी, फिर कितना प्रोपोर्शन में कैसे कैसे मिलाने से तब ये भी रस होता है, उसमें भी मधुर रस ने? ये अत्यंत गोपनीय है, इससे भी अधिक श्रेष्ठ राधा जी का है। तो वो लोग जो राधिका जी हैं, कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करके राधिका को जो सुख होता है, मदन भवतः सौख्यम सुख, हमारा अनुभव करके राधा जी को कैसा सुख होता है, वो कैसा है, वो सरस विषय सिद्धांत जो केवल स्वरूप दामोदर जी जानते हैं, अब दूसरा नहीं। गोपी प्रेम ये अद्भुत निराली और गोपनीय चीज है, साधारण स्तर से देखा जाता है, साधारण रूप में काम और प्रेम एक ही रूप में देखा जाता है। हमने अभी कुछ दिन पहले इसी की भूमिका के स्वरूप बतलाया था, काम और प्रीति, काम और प्रीति, सुख और प्रीति। सुख क्या है, अपने इंद्रियों को सुख लगने वाला जो कुछ है वो कहते हैं सुख अथवा काम है। काम होता है मन का, ये है मन की वृत्ति, माई की वृत्ति है, और प्रेम जो वृत्ति है स्वरूप शक्ति की, वो वृत्ति है। अब बतला रहे हैं काम, काम से यानी अपने सुख की इच्छा से ये सुख की उत्पत्ति होती है। काम का कारण क्या है, काम ही कारण है, मन कामना, सुख की कामना, और कार्य क्या है, सुख। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अपनी स्त्री सेवा करती है उससे सुख है, ये तो ठीक है, साली घर में आई उसको देख करके क्यों आनंद होता है, लोगों को क्या होता है, क्या कारण है, पत्नी से उसका संबंध है, इसको प्यार करने से पत्नी जी प्रसन्न हो, है ना। इसी तरह से संसार में जो कुछ परिवार के लिए भी है, माता पिता के लिए, दूसरे बंधु बांधव जितना है, विश्व ब्रह्मांड में जो हम आदर करते हैं किसी को, वो अपने सुख के लिए गाय को खिलाते हैं, गाय के सुख के लिए नहीं, गाय को पेट भरने के लिए नहीं, अपने दूध के लिए, है ना। बेटे को प्यार करते हैं बेटे के सुख के लिए नहीं, बड़ा होने पर हमको देखेगा, हमको पारलौकिक क्रिया भी करेगा और बुढ़ापे में पानी देगा, उसकी बहू आएगी, उसके लड़के नाती जो हमारे होंगे वो भी मेरी सेवा करेंगे, और मरने के बाद में हमको श्राद्ध करके अंतिम संस्कार करके हमको पितृपिंड और दे करके हमको इस देश से उद्धार करें। हम पत्नी को प्यार करते हैं किस लिए, क्यों प्यारी है, सुंदरी है, बड़ी शीलवती है, मेरी सेवा करती है, मेरे से, सोने से पहले, हमारे जगने से पहले जग जाती है, सोने के बाद में सेवा करके खिला पिला करके बर्तन मार करके रसोई चौका सब करके तब सो और हमारे पहले उठ जाती है, हमारी सेवा में जुट जाती है। कोई सुंदरी भी हो, पति के घर में रहती है, दूसरे से प्यार करे और कोई सेवा नहीं करती है तो प्यारी होगी कि नहीं होगी?
नहीं होगी।
इसलिए जो कुछ हम संसार को भी प्रीति करते हैं, विषयों में प्रीति जहां भी, वो अपने सुख के लिए। ये अपना सुख की वृत्ति किसकी है? मन की। मन कहां से बना? माया की वृत्ति। इसे सब माया से निकला है, इसलिए माइक चीज है ना। किंतु ये जो प्रीति है उसको मैंने बतलाया, प्रीति की तो बात छोड़ दो, कृष्ण की सुख हो ऐसी जो भावना है, कामना है, वासना है, ये भी मन की वृत्ति नहीं है। ये किसकी वृत्ति है? कहे मन ही से तो चिंता की नहीं, मन से चिंता जैसे कि जन्म से ही विषयों के प्रति अपने आप अनुरक्ति हो जाती है, कृष्ण के प्रति ये जो भावना है ये किसी की शिक्षा से होगा, बिना शिक्षा से नहीं होगा। और यही शिक्षा जो है ये स्वरूप शक्ति की, या तो साधु के मुख से आएगा जो कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, न शास्त्रों के पढ़ने से होगा, न सत्संग से होगा, कहीं से होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये कहां से हुआ? उसके अंदर में ये वृत्ति हुई, कहां से उसके अंदर में कहां हुई? भजन करते करते उनके अंदर में स्वरूप शक्ति की वृत्ति आई, तब दूसरों को देनी। इसलिए साधारण एक सेवा करने की जो वासना है, यही जब स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, तो अनुराग भाव महाभाव, अभी जो अधिरूढ़ की जो बातें कर रहे हैं, ये गोपी गोपी गणर प्रेम अधिरूढ़ भाव, ये सब स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, नीचे से ऊपर तक। इच्छा करने से ही नहीं हो जाएगी, जब उनकी कृपा होगी तब ऐसी भावना आएगी। और कृष्ण के माधुर्य में, कृष्ण के माधुर्य को अनुभव हो करके राधा जी को जो सुख होता है, ये किस चीज की वृत्ति है? ये काम नहीं है, ये पहले समझो, दोनों में बहुत अंतर है। लक्षणों में कुछ कुछ थोड़ा सा समता तो है, विषय एवं प्रति जे अच्छे जे अमार सही मत प्रति हो, विषयों में हमारी प्रीति जैसी है ऐसे ही तुम्हारे चरणों में है, किंतु भाई लक्षण एक भी नहीं है दोनों का, मित्र एक नहीं है। इसको आगे बतलाएंगे, एक है शुद्ध हेम और दूसरा है शुद्ध जंग लगा हुआ लोहा, इसको आगे बतलाएंगे। देखो संसारिक सुख हमको प्राप्त हो, ये कारण हुआ ना, इसके कारण है वासना, वासना से फिर विवाह हुआ, जिसको विवाह करने की वासना नहीं है उसको विवाह करना है, जिसको नौकरी करने की धन की लालसा ही नहीं है वो नौकरी करेगा? नहीं करेगा। जिसको विद्या लाभ करने की वासना नहीं है एकदम, वो पढ़े लिखेगा? भरत महाराज को कोई सब बड़े बड़े पंडित धुरंधर मिल करके पढ़ा सके? पढ़ने की वासना ही नहीं है। इसी तरह से हमारे सुख की वासना जो है ये संसार में फंसने का काम है, यह हुई माया। राधा जी का जो कृष्ण के प्रति माधुर्य का आस्वादन है, इसका कारण क्या है? इसका कोई कारण नहीं, जिसका कारण होता है वो ध्वंस चीज हो जाती है। जिस चीज का जन्म है, हमारे जन्म का कारण क्या है? कृष्ण को भूल जाना। राधा जी का जो कृष्ण को सुख देना की जो लालसा है और उनके सुख से राधा जी को जो सुख होता है, इसका कारण क्या है? कोई भी कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। प्रेम तो उनके बपौती चीज है, अपनी चीज है, प्रेम तो उनको ही है, इसलिए स्वाभाविक रूप में उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए यह प्रेम कभी ध्वंस नहीं होता। इसलिए शुद्ध स्वरूप शक्ति की यह वृत्ति है। वहां पर कृष्ण को सुख देने की जो वृत्ति कामना है वो ऐसी है, जहां कृष्ण को थोड़ा सा सुख दिया उसे लाख कोटि गुण सुख उस व्यक्ति को मिलता है, स्वाभाविक रूप में जो कृष्ण के सुख देने की लालसा है। इस चीज को प्रमाण करना है क्या, सुख जो साधारण है, जो काम जिसको करते हैं, और प्रेम दोनों एक चीज नहीं है। इस प्रेम को आस्वादन करके राधा जी कैसे सुखी होती हैं, इस चीज को बतलाना है, इस चीज को यहां पर, यही तीसरा कारण है। अब उसके उदाहरण देने के लिए गोपियों को ले आते हैं। गोपी प्रेम, गोपी बने प्रेम अधिरूढ़ भाव। जब गोपियों का ही प्रेम अधिरूढ़ भाव है तो राधा जी का क्या होगा, इसको तुलना देने के लिए। अब अधिरूढ़ किसको कहते हैं, इस चीज को हम लोग कल बतला करके तब फिर इस पर घटाएंगे, ये कैसा अधिरूढ़ है जो कृष्ण के अंदर में भी लोग पैदा कर दिया।